प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार के साथ और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम फिर से बाइबल में से यहूदा की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सबके लिए इस पत्री का यह अंतिम अध्ययन होगा। परंतु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस अध्ययन के द्वारा अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाए हैं और प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी निरंतर पत्र के माध्यम से, फोन कॉल के द्वारा से हमसे संबंध रखेंगे ताकि हम फिर परमेश्वर के वचन को मजबूती के साथ आपके सामने रख सकें। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को फिर से दिया है ताकि हम यहूदा की पत्री का अध्ययन एक साथ मिल करके कर सकें। यद्यपि कि हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं परंतु रेडियो के माध्यम से हम आपके वचन का अध्ययन एक साथ कर पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे अवसर के लिए। पिताजी, इस घड़ी हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो में से आपके वचन को सुनना चाहते हैं, विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि वे आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, अपने मित्रों को बताने पाए, उत्साहित करने पाए और उनकी सहायता करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, तनाव और दबाव में है। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, अपने वचन से बातचीत करें ताकि वे भी अपने मनों को आपकी ओर फिराने पाएं। आज के वचन के द्वारा आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारे लिए इस पत्री से आज का अंतिम अध्ययन होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि विधर्म के युग में विश्वासियों को क्या क्या करना है और इसके लिए यहूदा सात बातें हमें बताता है। दो बातें हमने देखी हैं। पहला, हमें अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करना है, अर्थात हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। वचन ही के द्वारा हम संसार पर जय अर्थात विजय पाते हैं। दूसरा है, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। जी हाँ, हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है। पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवाता है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर को आवश्यकताओं की सूची देने की अपेक्षा उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति करना है, जिसे आज हम कई बार भूल जाते हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और उन बातों को भी देखेंगे। आइए आप मेरे साथ यहूदा की पत्री उसके 21 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। मेरे प्रियो, इस पद में दो बातें दी गई हैं जो विधर्म के युग में हमारे लिए काम करना आवश्यक है, और इसको हम तीसरी बात के रूप में देखते हैं। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हमें समझना है कि परमेश्वर विश्वासियों से प्रेम करता है। हमने देखा है कि यहूदा विश्वासियों को प्रिय कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह उनसे प्रेम करता है या वे यहूदा से प्रेम करते हैं, परंतु यह कि वे परमेश्वर के प्रिय हैं। मैं फिर कहता हूं कि आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। जी हां, आप उसके प्रेम की गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। यहूदा कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में रखो, उसके प्रेम को अपने जीवन और अपने मन में भर जाने दो। विधर्म के युग में इसकी आवश्यकता है। चौथी बात हम देखते हैं, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। मेरे प्रियो, मैंने एक बार एक सेमिनार के एक प्राध्यापक को अपनी कलीसिया में, जहां मैं रहता था, प्रचार करने के लिए बुलाया। कलीसिया में किसी ने विश्वासियों के उठाए जाने के विषय में उन पर संदेह प्रकट किया, तो भोजन करते समय मैंने उनसे पूछा कि क्या वह कलीसिया के उठाए जाने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, जी हां, मैं करता हूं। मैंने पूछा, प्रभु हमें किस आधार पर अपने साथ ले जाएगा? उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा उद्धार किया गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया की, और जब वह मुझे उठाकर अपने साथ ले जाएगा तब भी उसकी दया ही के कारण ऐसा होगा। मेरे प्रियो, यह एक अच्छा उत्तर था और कलीसिया के उठाए जाने के विषय में उन पर संदेह करना व्यर्थ था। जैसा कि आगे हम देख चुके हैं कि परमेश्वर की दया एक प्रमाण है कि परमेश्वर आज आपकी चिंता करता है और आपकी सुधि लेता है। वह दया का धनी है। जी हां, वह आपके विषय अत्यधिक चिंतित था, इसलिए उसने आप पर दया की और अपने अनुग्रह से आपका उद्धार किया। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, यहूदा कहता है, दया की बाट जोहते रहो। प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके आने की प्रतीक्षा में जीवन पाएं, जीवन जिएं। मैं आशा करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन काल में आ जाए कि मैं उसके साथ चला जाऊं। मेरा प्रस्थान करना उसकी दया के कारण होगा, न कि मेरे किसी गुण या योग्यता के कारण। यदि मेरा उठाया जाना मेरी योग्यता पर हो तो मेरा उठाया जाना कभी भी संभव नहीं होगा। मैं एक बहुत ही अच्छी बाइबल अध्ययन कक्षा में गया। वहां सिखाया जाता था कि केवल भक्त जन ही उठाए जाएंगे। वे मेरे उठाए जाने के विषय निश्चित नहीं थे, परंतु मेरे मित्रों, मैं सबसे यह कहता हूं कि जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेने आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं उसकी दया की बाट जोह रहा हूं। अब हम पांचवी बात देखेंगे और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यहूदा उसके 22 पद को। लिखा है, उन पर जो शंका में हैं दया करो। कहता है उन पर जो शंका में हैं दया करो। मेरे मित्रों, आज भी अनेक सच्चे भक्तों के मन में शंका होती है, हमें उनके प्रति दया दर्शानी है। सेवा कार्य में मुझे कुछ लोगों के साथ दया दर्शाने में परेशानी होती है। हमारी कलीसिया में एक महिला वर्षों पूर्व हमारे बाइबल अध्ययन में आती थी। वह 6 महीने तक प्रति सप्ताह मुझसे प्रश्न पूछती थी। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे प्रश्न जाल में फंसाना चाहती है, अतः मैंने अंत में उसे बड़ा ही रुष्ट उत्तर दिया और वह पलट कर चली गई। उसके साथ आने वाली महिला मेरी कलीसिया की सदस्य थी। उसने मुझसे कहा, उसके साथ आप धीरज धरें, वह एक अति बुद्धिमान स्त्री है और उसका नाम महानुभवों की पुस्तक में है। वह विभिन्न धार्मिक पंथों में रह करके पूर्ण रूप से उलझन में पड़ गई है। अब वह इस भ्रम जाल से निकलने का मार्ग खोज रही है। क्या आप उसके साथ दया प्रदर्शन करेंगे? अतः मैंने उनसे प्रश्नों को धीरज के साथ सुनना शुरू कर दिया और उनके उत्तर देता था। 3 माह पश्चात उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। अपने घर लौट जाने के बाद उसने मुझे एक बहुत अच्छा पत्र लिखा और बताया कि प्रभु कैसे उसकी अगुवाई कर रहा है। मेरे मित्रों, हम जिस युग में वास कर रहे हैं उसमें परमेश्वर के वचन पर संदेह किया जा रहा है, और जो वचन में विश्वास करना चाहते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें उनके साथ धीरज धरना है, क्योंकि उनकी शंकाएं सत्य निष्ठा से पूर्ण हैं। आइए हम 6वीं बात को देखेंगे। यहूदा उसके 23 पद में लिखा हुआ है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहां पर 6वीं बात हम देखते हैं, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। ये वे लोग हैं जिन्हें हम असाध्य पापी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्धार असंभव है। मेरे मित्रों, मैंने तो देखा है कि ऐसे लोगों में से अनेक जन हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनकर मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं। यहूदा हमें आदेश देता है कि हम उनके लिए आशा ना छोड़ दें। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, यह कैसा महान आदेश है। जी हां, कि हम उन्हें मरते हुए में से बचाएं, वचन सुनाएं ताकि वे भी प्रभु के लिए जीते जा सकें। जकर्या के पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या वह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? परमेश्वर ने यरूशलेम के उद्धार की इच्छा करते हुए कहा, मैं लुकटी को आग से निकालने पर हूं। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई चाहे तो उसका उद्धार असंभव नहीं है। जी हां, यदि आप चाहते हैं कि आप उद्धार प्राप्त करें तो आप उद्धार पा सकते हैं, वसरते कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। आपको प्रभु यीशु के पास आना है, जिसने अपने आप को आपके पापों के बदले में क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। आप विश्वास करेंगे तो निश्चय जाने कि आप उद्धार पाएंगे। 7वीं बात हम देखते हैं, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहाँ शरीर से अर्थ है मनोविज्ञान संबंधित मनुष्य की अवस्था। उदाहरण के लिए, ऐसा संगीत पसंद करना जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। कुछ लोग इसे मनुष्य का स्वार्थ कहते हैं। यह उचित परिभाषा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उद्धार से वंचित रहकर भी अति परोपकारी होते हैं। कुछ लोग इस मानवीय प्रकृति को पशु व्यवहार कहते हैं। परंतु क्योंकि मनुष्य अपनी पतित अवस्था को संतुष्ट करना चाहता है, अतः पशु शब्द भी उचित नहीं है। उन्हें बुद्धिजीवी कहना भी उचित नहीं है। लांगे, जो एक महान विद्वान है, अपनी टीका में कहता है, वह देहिक बनता है जो पूर्ण रूप से शारीरिक या पार्श्विक है। यदि उसे रोका ना जाए तो वह पूर्ण रूप से अमानुष हो जाएगा या सबसे अधिक बुरा प्राणी बन जाएगा, तर्क करने वाला पशु हो जाएगा। परंतु अपने अभ्यासों में और अंततः देहिक या देह के दास का तर्क रखते हुए वह एक जंगली पशु से भी अधिक खूंखार हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक दुष्ट आत्मा शैतानी धुरता के साथ खूंखार स्वभाव, जिसमें पार्श्विकता का संतोष व्याप्त होता है, मनुष्य में अलौकिकता है जो उसकी दशा को भयानक संकट बना देती है। वह या तो अपनी प्रभुता को खो देता है या प्रभु के स्थान पर दास बन जाता है। तो ऐसी प्रकृति में वह आ जाता है जहां वह स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे कि एक पशु जो उसे दिया गया परमेश्वर का आरंभिक स्थान त्याग नहीं पाता है। इस प्रकार यह उच्च स्तरीय प्राणी पूर्ण रूप से पतित हो जाता है और दुष्ट आत्मा के स्वभाव में आ जाता है, जहां बुराई उसका ईश्वर बन जाता है या जैसा मिल्टन कहता है उसकी अच्छाई बन जाती है। परंतु वास्तव में होना यह है कि उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। परमेश्वर देह द्वारा किया गया कोई भी काम अपनाएगा नहीं। जी हाँ, वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और हमें भी घृणा करना है। आप सोचते हैं कि आप अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने शरीर से अच्छा काम करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यह उसकी दया है कि हम उद्धार पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहूदा की यह छोटी सी पत्री महिमामय आशीर्वाद के साथ समाप्त होती है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए यहूदा उसके 24 और 25 पद को, जो इस पत्री का अंतिम पद है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। मेरे प्रियो, अब यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु का स्थान देखना चाहते हैं, विशेष करके विधर्म के युग में, तो वह यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वह परमेश्वर है, वह हमारा प्रभु है, उसे हमारे जीवन का प्रभु होना है, उसका महिमान्वन होना है। हमें उसकी महानता की चर्चा करके उसका नाम ऊंचा करना है कि वह कैसा महान परमेश्वर है, वह कैसा सामर्थी है, वह सामर्थी उद्धार करता है, वह गरिमा से पूर्ण है, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी को दिया गया है। जगत उसकी पकड़ से बाहर नहीं है। संपूर्ण अधिकार उसी का है। आप चाहें या ना चाहें, आपको उसके सामने घुटने टेकने ही होंगे। जी हां, विधर्म के इस युग में परमेश्वर की संतान के लिए प्रभु यीशु का महिमान्वन करना अनिवार्य है, और इस प्रतिवादी संसार में उसे थामे रहना हमारे लिए अति आवश्यक है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 4:12 में, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हां, सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है यीशु, जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। आप इसे माने या ना माने, आपको उसके सामने घुटने टेकने ही होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आज आप सच्चाई को जान करके भी आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये त्रासदी है, हाय है, क्योंकि आपने जानबूझ करके, जानते हुए भी आपने प्रभु को नहीं थामा, तो आपके जीवन विनाश की ओर बढ़ेंगे। परंतु यदि आपने इस सत्यता को समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य की परिपूर्णता देंगे। मेरे मित्रों, आज हमें निर्णय लेना है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। आप मेरी बातों पर ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का आप अध्ययन करें, गहनता से अध्ययन करें, सत्य को ढूंढें, सत्य के मन से ढूंढें, सिर्फ इसको यूं ही पढ़कर के पार ना करें। तब आप जानेंगे कि सच्चा उद्धारकर्ता आपके निकट है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना है और उसके हाथों को थामना है। आप जानेंगे कि आप उसके करीब हैं। मेरे मित्रों, यहूदा की पत्री का अध्ययन यहां पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभों को प्राप्त किया है। आपने इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक के द्वारा से बहुत सी बातों को सीखा है जो हर एक जीवन के लिए अति आवश्यक है, कि हम विधर्म के युग में रहते हैं और हम कैसे परमेश्वर की निकटता में बने रह सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इन अध्ययनों का अपने जीवन में पालन करेंगे और परमेश्वर के निकटता में बढ़ने का यत्न करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन हम अगले अध्ययन में एक नई पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसलिए आप अवश्य ही अगले अध्ययन में हमसे मुलाकात करें, ताकि हम नए पुस्तक के द्वारा फिर से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया यहाँ, भूले और भटके थे हम।